Hele gitsin.
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौरा भक्त वृंद, जय श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम और राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्रसत श्री श्रीमद अभयचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कुटि वैष्णविंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिगुवाधन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बड़े सुभद्रा महारानी की श्री श्री कृष्ण राम की राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की गौर निताय की समवेद भक्त बृंद की गौर प्रेमानंदी अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिरिव भवति नष्टिके मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं जद्ग्रीवातम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारिणम श्री चैतन्यम ईश्वरम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 37, ठीक है ना? कितना है? एषो देहं श्रुतवात्मनात्मा मर्ता विक्रमी भस्मवत् तयनामात्मा सत्कृत्या श्लाघयन्ति हासतमा एष देह श्रुतनात्मा मर्त विक्रमी सा भस्म सात तत्मा साकृत्या श्लाघयती हसतमेश श्रुतियानात्मा मर्त विक्रमी भस्म भत् तत्मा साकृत्या श्लाघयन्ति हसतमा। स्वदेह स्मृतिनात्मा मर्तबीडि कृषि संभवात् शब्दार्थ। ये जिन सन्यासियों द्वारा स्वदेह अपना शरीर स्मृतः मानते हैं, अनात्मा आत्मा से भिन्न, मर्त मृत्यु से प्रभावित, बीट मौल या विष्ठा बनकर, कृमि कीड़े मकोड़े, भस्मवत या राग की सदृश ते ऐसे व्यक्ति एनम इस शरीर को आत्मसात कृत्या फिर से आत्मा के साथ पहचान करके श्लाघयन्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कहकर महिमा गाते हैं। ही निसंदेह असतमा सबसे बड़े धूर्त। अनुवाद। जो सन्यासी पहले यह समझता है कि शरीर मर्त है और यह विष्ठा कृमि या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उनका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। कृपया दोहराइए। जो सन्यासी पहले यह समझते हैं कि ये शरीर मर्त है और यह विष्ठा कृमि या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उनका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। सन्यास को वह होता है कि वह ज्ञान में उन्नति करके वह भली भांति समझा चुका है कि ब्रह्मा अर्थात वह व्यक्ति स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं है, जिसे यह समझाता है कि संन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यह अहं ब्रह्मास्मि पद पर स्थित हो जाता होता है। ब्रह्मात्मा प्रसन्नात्मा न सूचती न कांकती। जो व्यक्ति न तो शोक करता है, न अपने शरीर को पालन करने के लिए लालसा करता है, किंतु सभी जीव को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकता है, वह भगवान की व्यक्ति भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत भक्ति में प्रवेश करता है, अभी तो यह समझा बिना कि आत्मा तथा शरीर भिन्न है, बनावटी तौर पर अपने आप को ब्रह्मा नारायण मानता है, तो वह निश्चित रूप से नीचे गिरता है। ऐसे व्यक्ति फिर से शरीर को महत्व प्रदान करता है। भारत में ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो शरीर को महत्व प्रदान करते हैं, और उसमें से कुछ निर्धन मनुष्य की शरीर विशेष महत्व देते हुए दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं। मानो नारायण का भौतिक शरीर होता है। अनेकानेक सन्यासी शरीर को सामाजिक स्थिति को महत्व बल देते हैं, तथा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र ऐसे सन्यासी सबसे बड़ा धूर्त असत आत्मा समझती हैं। निर्लज है, क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर ज्ञात नहीं होता, और उल्टे ब्राह्मण के शरीर को ही आप ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण तो प्रदा ब्रह्मा की ज्ञान की निहित होता है, किंतु वास्तव में ब्राह्मण का शरीर ब्रह्मा नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर न तो धनी होता है ना दरिद्र। यदि दरिद्र का शरीर दरिद्र नारायण होता है, फिर धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनी नारायण कहलाता है। अतः सन्यासी नारायण का अर्थ है नहीं मान जानते, जो शरीर को ब्रह्मा या नारायण मानते हैं, वे वहाँ पर अत्यंत घृणिति धोर के रूप में वर्णित किए गए हैं। देहात्म बुद्धि की वशीभूत हुए ऐसे सन्यासी शरीर को सेवा करने हेतु विशेष कार्यक्रमों पर बनाते हैं। वे कथाकथित धार्मिक कृत्य की हास्यास्पद संस्थाओं का संचालन करके जनता को भ्रमित करते हैं। यहाँ पर ऐसे सन्यासी का अपत्रय तथा असतमा अर्थात निर्लज तथा आध्यात्मिक जीवन से पतित कहा गया है। हम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रोर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदावधं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पवंत चित्र सन्दौतमनुद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम एवो केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यहाँ जो शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए संत उपदेश, ये लंबे समय से ये प्रसंग चले आ रहा है। आज भी जो श्लोक हम लोग पाठ करके श्रवण किए हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमको समझना चाहिए कि हम शरीर है कि आत्मा है। लब वो शरीर आत्मा में कोई अंतर जिनको नहीं मानता है और जिनको जानकारी भी नहीं है, तो मनुष्य जीवन में जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारे दो प्रकार शरीर है। कितना प्रकार का शरीर है? तो एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, जो मिट्टी एवं पानी आग आकाश वायु से निर्मित स्थूल शरीर है। मन बुद्धि अहंकार से जो निर्मित सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता का जो उपदेश दिए, खास करके दूसरा अध्याय में, इसका आत्मा एवं शरीर का बीच में अंतर क्या है, इसका आप पूरी पूरी व्याख्या की है। इसे शास्त्र में बहुत जगह में इसे वर्णन है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, जो सन्यासी है ये देह और आत्मा में बस शरीर और शरीर में क्या अंतर है जानता है, उनको पूरी तरीका से अनुभव होता है, तो उन्होंने काय मन वाक्य से भगवान का सेवा करने के लिए उन्होंने शरीर और संन्यास ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मवेद पुराण में जो प्रति श्लोक है आपको सबको याद होगा, असुमेध गवाड़म्भम संन्यास पैतृकम देवरण सुधात्पति कलुपंच विवर्जय। तो ये पांच जी आर पुराण में मना है। असुमेधम असुमेध यज्ञ करने का मना है, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज और भी कोई महाराज हुए उन्हें लोग असुमेध यज्ञ किए, क्योंकि ये घोड़े को चुना जाता है शास्त्र का अनुसार, कैसे प्रकार घोड़ा होना चाहिए, किसी रंग का होना चाहिए, उसका पूछ कैसे होना चाहिए और उनका कान कैसे होना चाहिए, खास करके उसका जो शरीर का रंग कैसे होना चाहिए, तो शास्त्र का निर्देश अनुसार उसको चुना जाता है। और राजा का जो कृतित्व जो उनका जस उसमें बना रहता है, संक्षेप में बहुत सारे सेना सामंत का साथ घोड़े को छोड़ दिया जाता है। वो पूरा पृथ्वी भ्रमण करने का बाद जो विजय होकर आता है बस सभी राज्य को जयकर किया जाता है, तब तो ये असुमेध यज्ञ किया जाता है। तो कलि युग में ये संभव है क्या? क्योंकि ऐसे लड़ाकू राजा भी नहीं है, आज तक तो कोई राजा सामने आके लड़ते भी नहीं, पहले अपना फोर्स पार्टी को भेज देते हैं, जो फोर्स पार्टी खत्म होते थे वो आए ही नहीं, कोई ठीक ही नहीं, क्योंकि उनको महीना दे के रखा जाता है, उनको मर जाने से अपना कोई नुकसान मानते नहीं, अपना खुद जिंदा रहने से ही सबसे धन्यवाद मानते हैं, अब बहुत धन दौलत भी खर्चा होता है उसमें। तो एक कलि युग में असुमेध यज्ञ भी आओ करना असंभव है, इसीलिए ये असुमेध यज्ञ भी बंद है। असुमेध गवाड़म्भम गोमेध यज्ञ भी बंद है, क्योंकि एक तो गो की हत्या ही होती है, ये महापाप है। शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि जो गो को गो माता अथवा पिता को हत्या करते हैं गोपत्या को, तो और उनका शरीर में जितना लोम है इतना साल तक आपको नरक में सड़ना पड़ेगा। तो ये महापाप से बचने के लिए कलि युग में इसको बंद किया गया। असुमेध गवाड़म्भम संन्यास भगवत गीता में बता गया आगे, संन्यास मतलब अपना तन मन धन से अब भगवान का सेवा करना चाहिए, इसलिए उनका दंड में तीन लकड़ी रहती है, तीन दंडी सन्यासी कहा जाता है। तो इसमें मना किया जाता है सन्यास, लेकिन फिर अभी हमारे इसकन में और गोड़िया मठ में और भी दूसरा जो संप्रदाय चार संप्रदाय में सब सन्यास से होते हैं। तो ये प्रचार के लिए ये प्रसिद्ध है कि सन्यास बुद्धे मरे करीबे नमस्कार। चैतन्य महाप्रभु सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र का पुत्र रूप में आए थे ब्राह्मण परिवार में, तो उन्होंने वो भी सिखा दिया और कि मैं ऐसे ही रहूँगा ब्राह्मण परिवार में, भक्त बन के तो कोई हमको सम्मान देंगे नहीं, और सन्यासी को जो अपमान करता उनको सम्मान नहीं देता, ऐसे चैतन्य चैतन्य तो वर्णन है, उनको तो पूरा सारा दिन व्रत करना चाहिए ना खा पी के एकादशी जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी एक शिक्षा दिए कि सन्यास बुधे मोरे करीबे नमस्कार, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। सन्यास पल पैतृकम, पल पैतृकम मतलब होता है कि पितृ श्राद्ध आदि में मांस और मछली आदि जो द्रव्य को परिवेशन करना है। हम लोग सुने होंगे कि पहले जमाना में खास करके जब वो नारद मुनि स्वर्ग आदि की यात्रा किए थे तो नरकपुर भी गए जमराजापुर में, वहाँ देखे कि पंडु राजा स्वर्ग उनको प्राप्त तो नहीं हुआ, नीचे सीढ़ी में उन्होंने बैठे हुए हैं। कारण क्या है? उसी जमाना में ऐसे विधान था कि मांस भी और श्राद्ध वगैरह में दिया जाता है, मछली वगैरह भी दिया जाता है। ऐसे वर्णन आता कि ऋषि लोग भी कभी कभी कोई महत्वपूर्ण के लिए मांस भी भक्षण किया करते थे। एक आप कहानी सुने होंगे भागवत में आता है कि वो शिकार करने के लिए गए थे, आने के शिकार जो करके आए उनको इतना भूख लगा कि खरगोश के ही खा लिया उन्होंने। और एक जगह में वर्णन है कि उन्होंने एक राक्षस ने माया से एक ऋषि को प्रताड़ित किए, धोखा दिए, मांस खिला दिए, तो उन्हें ध्यान भर में पता चला कि ये मांग हमको मांस खिला दी, तो उन्होंने श्राप भी दे दिए। तो ऐसे कई राजनीति भी चलता है। तो जब नारद मुनि आए राजसभा में युधिष्ठिर महाराज का, साधु संत को समाज में बस खास करके हमारे भारतवर्ष में बहुत सम्मान दिया जाता है, तो उनको स्वागत किया गया बहुत आठ बाट से। कुशल समाचार पूछे कहाँ से आए, कहाँ तक गए थे, किसके लिए गए थे, तो उन्हें बोला कि मैं तो आज स्वर्ग होके जमरलोक भी गया था। तो वहाँ आपने क्या क्या देखा ना, देखा कि आपका पिताजी का स्वर्ग प्राप्त तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कारण क्या है, हम तो धर्मात्मा पुत्र है था उनका। बोले नहीं कि एक सिविल कार्ड जो कि रुईदास मुची को अपनों और मांस भक्षण नहीं कराया, इसी वजह से और आपका पिताजी का स्वर्गवास नहीं जो जमलोक में ही पड़े हुए। उसी समय अर्जुन ने फिर शिकार खेलने के लिए हिमालय प्रदेश गए। कौन से आप पशु को लेके आएंगे? एक गंडार जो कि हमारे गुवाहाटी आसाम प्रदेश में मिलते हैं। तो भगवान का भी परीक्षा था, तो उसको आओ गंडार मिला नहीं, पशु कोई पशु मिले नहीं। अंतिम समय में पार्वती का जो पारित गंडा थे उसको देखभाल कौन करते थे? उनका अर्जुन का ही बेटा नागार्जुन। जब उन्होंने ये राजस्व जगह के लिए यात्रा किए थे उसी समय यह घटना घटी थी। उन्होंने गांधर्व मत में नागाबाली की शादी किए थे, तो दोनों का नाम से और वो बेटा का नाम दिए थे नागार्जुन। ये नागाबाली थे भगवान और सखा अर्जुन थे। लेकिन जब विदाई का समय में अर्जुन उनको बतलाए थे कि जब एक नागार्जुन वृक्ष भी होता है जो कि अर्जुन वृक्ष है जो कि हमारे किसने कन्हैया को बांध दिए थे आगली महीने बांधेंगे बाबू यशोदा माता, उसको भी नागार्जुन वृक्ष कहा जाता है। तो पाताल लोक में नागलोक में अर्जुन वृक्ष भी रहा था करता था। तो उसको उनका पत्नी को बता दिए थे कि जब इसमें
कुछ मुरझापन आ जाएगा, पता चलेगा कि मेरा ऊपर कुछ विपद आया है। आज भगवान का पुत्र पिता पुत्र का मिलन भी कराना था, इधर फिर पंडू राजा का उद्देश्य से उनको मांस भक्षण करना था मुझे रोहिदास मुझसे, तो आज पशु कोई शिकार में मिले नहीं, तो आज पाताल से कैलाश को आदत ही मरते और लोग को हिमालय प्रदेश में, और जो पार्वती का जो पालित गंडा है उसको देखभाल कर देते हैं कौन, नागार्जुन देखभाल करते हैं। तो अर्जुन आज पहुंचे वहाँ हिमालय प्रदेश में कैलाश में, तो उन्होंने उसको तीर से मार दिए, जो मार दिए वो तो प्राण पखार उड़ गया उनका। तब तक नागार्जुन क्या करते थे ना, तो पाताल लोग गए थे खाने के लिए, आए के देखे कि अपना गंडा मृत्यु मुख पति थे, तो उन्होंने आस पास में फिर देखभाल किए, देखे कि एक वीर पुरुष तीर धनुष लेके खड़ा है, तो उनको पता चला कि यही अवश्य मारा हुआ। तो बात बात में फिर बोला कि जो नागार्जुन बतलाया कि ये गंडा को कौन मारा, बड़ा मैं मारा, कारण क्या है, कारण में हम तो क्षत्रिय शिकार करने का मर रहा हूँ, ये प्रवृत्ति है। तो बात बात में फिर दोनों में बाप बेटा में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने बोले कि अरे तुम तो बच्चे हो, हमारे से तर्क क्यों कर रहा है, तो अपना प्राण का और आशा है तो चले जाओ। तो नागार्जुन छोटे थे लेकिन उन्हें बोला कि मैं सुना हूँ अर्जुन त्रिपुर विजयी है, भगवान का सखा है, लेकिन मेरा जो पालित गंडा को तुम आप हत्या किया है, मैं अब तुमको बिना युद्ध में छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने बोले तुम खेलने कूदने वाला लड़का, तुम क्या मेरे से लड़ाई करोगे। तो और नागार्जुन ने बतलाया कि आप लड़ाई करके देखिए पहले, बाद में आप परीक्षा का कौन फेर रहा है कौन पास हो रहा है। तो उसी समय युद्ध छिड़ गया दोनों में, बहुत लंबे समय युद्ध होने का बाद एक दिव्य अस्त्र होता है कि मोहनास्त्र, वो जब नागार्जुन अर्जुन का ऊपर प्रयोग कर दिए वो अचेत हो गए पड़ गए। तब सिग्नल हुआ कहाँ, पाताल लोक में उनका जो पत्नी थे नागावाड़ी, देखे कि अभी नागार्जुन को अर्जुन को जहाँ मुरझा चुका है, उनका जो हाथ में जो रत्न चूड़ी था कंकन था वो भी और मोड़िन हो चुका था। तो उन वहाँ से उन्होंने फिर आए आके देखे कि अर्जुन बेहोश होकर गिरा हुआ, फिर अपना पुत्र को उन्होंने भत्सना किया, तुम नहीं जानते तुम्हारे पिताजी है, तो उन्होंने बोले कि तुम तो कोई मेरे को बताया नहीं कि अर्जुन पिताजी है बोल के। और उनका माता नागावली ने उनको बोला कि तुम्हारे जैसे हतभागा पुत्र मेरा गर्भ में पैदा हुआ। उन्होंने फिर रोने बिलखने लगे, तब तब फिर भगवान कृष्ण को स्मरण जब किए तो भगवान आए वहाँ आके, फिर भगवान के पास क्या चमत्कार दिखाने का कोई बड़ी बात तो था ही नहीं, तो उनको फिर नागमणि लेके फिर जब स्पर्श कराए तब भगवान का जो प्रिय सखा अर्जुन फिर पहले जैसे सचेत थे इसे हो गया। तो जो भी है कि तो ऐसे विधि विधान था उस समय, लेकिन इस जमाने में ऐसे होने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा, जेल हो सकता है, आप शिकार कर लेंगे कोई पशु को मार देंगे। आप सुने होंगे एक हमारे फिल्म का हीरो जो क्या नाम मेरे को तो मालूम नहीं, उन्होंने एक हिरण को मार दिए थे उसको जेल भी मारा। तो ये कलि युग में करना संभव नहीं है, असुमेध गवाड़म सन्यास पड़ पैतृकम देवरण सुतापति कड़ो पंच विभर जाए। उसी समय जमाना में प्रथा प्रचलित था कि अकाल में बड़े भैया शरीर त्याग कर दिए तो अभी देवर को भाभी का साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता, क्योंकि हम भगवद गीता में सुने अर्जुन बतलाए भगवान को कि हमारे जैसे पुरुष लोग सब वो राम नाम सत्य हो जाएंगे युद्ध में तो सब विधवा आ जाएंगे ना उन लोग, फिर अबाध में मिला मिसा करेंगे तो उनका और गर्भ से वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, और वर्ण शंकर पैदा होने से उसमें नुकसान क्या है ना, पितृपुरुष को उन्हें जब और पिंड प्रदान करेंगे बा कोई पानी प्रदान करेंगे उसको मिलेगा नहीं। जैसे अभी थोड़ा दिन पहले पितृपक्ष चला गया जो कोई सारे भक्त लोग भी किए, कर्मकांडी वाला तो करते ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये भी प्रदर्शन के पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि उसी समय ब्राह्मण संप्रदाय का और प्रभाव भी बहुत था। आज से 500 साल पहले सब काना कानी करने लगे कि अरे निमाई पंडित का पिताजी तो बहुत दिन से गुजर गए, उन्होंने पिंडदान नहीं किए, सब निंदा करने लगे। तो भाई भगवान पिंडदान का छल में वहाँ फिर दिखाई गई। जो भी हो तो अभी जमाना में ये जो अंतिम जो सिद्धांत है देवर्ण सुतात्पत्ति, तो देवर से पुत्र संतान उत्पाद करने का मना है। उसी जमाना में वो प्रचलित था कौड़ो पंच विवर्त, ये पांच चीज मना है। तो हमारे प्रभुदानंद सरस्वती महाराज एक बार बोले, मैं पूछा था तो हमारे सन्यास की क्यों लेते थे। एक तो है कि सन्यासी को बहुत सम्मान दिया जाता है और उनका जो भी सिद्धांत तो उन्होंने प्रस्तुत करेंगे, ऐसे नहीं कि भूल सिद्धांत प्रस्तुत करने से मान जाएंगे जनता। ये है कि भारतवर्ष में वैदिक पंथा है, सन्यासी को और समाज का मस्तक माना जाता है, उनका उपदेश सभी लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि अपना जीवन में उनको उन्होंने पालन करते हैं। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सीता, तो चैतन्य महाप्रभु इसको सिखाए। तो यहाँ पर आप प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सारे सन्यासी आजकल हो जाते हैं जो कि समाज से भी हो जाते हैं, इसीलिए हमारे संस्था में जब सन्यास के लिए अप्लाई किया जाता है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल भी वेटिंग करना पड़ता है, और जब धीरे धीरे नहीं रखते फिर ले भी नहीं पाते, छोड़ जाते दूसरा संप्रदाय में ले लेते। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है कि आप हरिनाम दीक्षा जिससे लिए ब्राह्मण दीक्षा उनसे लेना है, सन्यास भी उन्होंने जीवित रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे उनसे ही सन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज का जब मस्तक रूप में उनको चुना जाता है। और भी आगे एक बात आएगा कि वह पीछे चला गया, कोई बात देखा जाता कि सन्यास का पतन हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उनका जो स्थिति उसी प्रकार का नहीं होता है, नाम जश प्रतिष्ठा के लिए सन्यास ले लेते, तो सन्यास धर्म उन्होंने रक्षा नहीं कर पाते। जैसे चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहा करते थे इसी चतुर महीना में, पहले तो दक्षिण भारत में रहे वेंकट भट्ट का घर में, भगवान का लीला रस का आस्वादन किए एवं लक्ष्मी नारायण एवं भगवान कृष्ण में अंतर किया, उनको समझाए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जो पुरी में भी रहा करते थे, वहाँ उस समय एक बहुत बड़ा विद्वान वहाँ रहते थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कम उम्र में लगभग 24 साल उम्र में संन्यास लिए थे, तो उन्होंने संन्यास धर्म का रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें चाहते थे क्या, इनको हमेशा शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, तो वेदांत पढ़ना चाहिए, वेद उपनिषद पढ़ना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम में मत्त रहते थे। एक तो बाह्य बाह्य रूप में भक्त रूप का कीर्तन करते थे, एवं गुप्त रूप से अंतरंग भक्त का साथ उन्होंने लीला का रस आस्वादन करते थे, क्योंकि ये जन समाज को शिक्षा देने के लिए। इतना तक कि एक समय कोई एक मधुर संगीत सुनाई दिया तो चैतन्य महाप्रभु उसी तरह भागने लगे। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, तो उन्होंने बोले बगा रहे एक माता जी है यहाँ गा रहा है, ये युवती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे तुम बचा दिया, नहीं तो मेरा सन्यासी धर्म नष्ट हो जाता, क्योंकि संन्यास लेने का बाद जब उसका पतन आ जाता है, उसमें प्रपात लिखते हैं एक जगह में कि उल्टी करने का बाद खाने का बराबर है, उल्टी किया जाता है सो गंदा चीज होता कि नहीं, तो उसको पुनः भक्कन करने बाद असाधन में कोई रुचि नहीं लेता है। तो शास्त्र में उसको बहुत नीच भाषा से निकृष्ट भाषा से वर्णन किया गया। और चैतन्य महाप्रभु यह भी सिखलाए कि जब कोई माता आते थे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि चतुर महीना में चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहा करते थे, तो उनको मिलने के लिए सारे गृहस्थ भक्तों को यहाँ से जाते थे, वृंदावन से जाते थे, उड़ीसा से और प्रांत से आते थे और बंगाल से भी जाते थे, जो कि शिवानंद सेन इनका देखभाल किया करते थे। यही नहीं कि कल रथ यात्रा का आनंद लेने के लिए उसी बहाना से महाप्रभु से मिलने भी जाते थे, तो माता लोग उनको दूर से प्रणाम किया करते थे, ये उन्होंने सिखलाया। क्योंकि शास्त्र में ये भी वर्णन है, हमारे एक नाटक होता है मायपुर में, उन्होंने बताते हैं डायलॉग में कॉमेडी रोल में उन्होंने कि काठ का पुतली भी और हा करता मुंह खुलता है कहा जाता है, अरे चैतन्य महाप्रभु तो इस कटर को कटर से पालन किया कर देते हैं, क्योंकि लकड़ी का जो पुतली होता है डॉल होता है सन्यास को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रकृति का जो का माता का जो आरस शरीर बना दिया जाता है इसमें इंद्रिय विकार हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कट्टर से सन्यास आश्रम का पालन किए और भक्ति का उन्होंने प्रसार किया, लेकिन प्रभुपाद उसको कोई जगह में कूट किए हैं कि सन्यास तो ले लेते हैं फिर समाज सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये अनुभव नहीं है कि देह देही में क्या भेद है, क्यों सन्यास लेना चाहिए। कहा जाता है कि महंत स्वभाव है तारिते पमर निज कार्य नहीं जान पर घर, सन्यासी बा साधु संत का कोई काम धंधा तो ही नहीं, भगवान का नाम करें मठ में और खाएंगे खटिया में सोएंगे, लेकिन उनका स्वभाव होता है दूसरा का उपकार करने के लिए, इसलिए कष्ट स्वीकार करके और घर घर में गांव गांव में शहर शहर में गली गली में भगवान का नाम को प्रसार करते हैं, क्योंकि एक तो गृहस्थ है के गृह में दिए जो भागवतम में पहला स्कंद में वर्णन है, एक तो पुत्र परिजन को लेके अपना बंधु बांधव जो मित्र है उन लोग को जो लेके जो भजन करते हैं उसको गृहस्थ कहा जाता है, अपना इंद्रिय तृप्ति चक्कर में जिन्होंने खाली कमाओ खाओ उसको गृह में भी कहा जाता है। इसलिए हमारे जो संस्था है दैव वर्णाश्रम है, एक तो एक वर्णाश्रम है, उसको पालन करने से क्या होगा उसको भी अशोकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अतबंदी दिद श्रेष्ठ वन्याश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिधि हरि दूषण, ये वन्याश्रम धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या है ना, भगवान का संतुष्ट विधान करने के लिए। हम जो वृंदावन धाम में है यहाँ पहले जो गोपियाँ थे किसके लिए श्रृंगार करते थे, दूसरा को फंसाने का चक्कर में नहीं, भगवान को आनंद देने के लिए, क्योंकि गोपी भाव का अर्थ महानिधि महाराज गायत्री मध्यमा माधुरी में लिपिबद्ध करते हैं, हर इंद्रिय देके जब हम भगवान का रस पान करते हैं, गोमूत्र इंद्रिय गोमूत्र पृथ्वी होता गोमूत्र माता होता, तो हर इंद्रिय देके जब भगवान का रस पान करते हैं एवं लीला गुण एवं धाम परिकर का जो रसासाधन होता है उसको गोपी भाव कहा जाता है। नहीं तो मार्केट में तो आपको नथ भी मिल जाएगा पायल भी मिल जाएगा और गोपी ड्रेस तो वृंदावन में अवेलेबल है कि नहीं है कि नहीं, वैसे 300-400 रुपया 1000-1200 रुपया में पहन लीजिए फिर गोपी भाव बन लीजिए, लेकिन इसको हमारे गोस्वामी लोग स्वीकार नहीं करते, इसको सह लिया, इसलिए भक्ति ठाकुर बोले कि उसी समय 13 संप्रदाय था, कितना था जी 13, तो आज तो कितना हो गया कोई गिनती से बाहर है, इसीलिए हम दूसरा बाबा कथा में बा चिकने चुपने बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रज्ञ हैं पंडित हैं एक एक कथा को एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ करके अब बहुत सुंदर संग ढंग से व्याख्या करेंगे, सुनने में श्रुति मधुर होगा, लेकिन इसमें हमको असर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जीवन में कभी उतारते नहीं अपना जीवन में। और दूसरा के लिए एक आप कथा सुने होंगे, वो प्रसिद्ध कथाकार थे, उन्होंने लेक्चर में बता दिए कि मांस भक्षण करना निषेध है, महापाप है। जो घर में आए बोले कि मछली का सब्जी कहाँ है, वो तो पत्नी बोले सामने बैठी थी कथा सुन रहा था, धुआ पहले पे चल दिए, बोले आप तो हम मना किए। अरे मैं माना क्या, उन लोग के लिए माना क्या, थोड़ी मेरा लिए माना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये हमको सिखाए, वो भगवत गीता में भी ये वर्णन है कि जदा जदि आचरति श्रेष्ठ तो देव तरजन। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए कि अपनी जीवे आचार्य धर्म जीवे रे सिखा, जब तक खुद जीवन में आचरण नहीं करेंगे तब दूसरा का ऊपर आर का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप सुनेंगे कथा, एक लड़का बहुत मिठाई खाया करता था, जो कि आजकल ज़्यादा मिठाई खाने से मधुमेह बीमार बा डायबिटीज के शिकार होते हैं। तो इसी डर से माता ने महात्मा गांधी का पास लेके गए बेटा को, कि महात्मा गांधी, महात्मा मतलब उसका विशाल हृदय होता है, पता नहीं महात्मा गांधी कौन से उपाधि से उनको नाम दिया गया था, लेकिन भगवत गीता में लिखा हुआ है महात्मा तो महापार्थ दैवी प्रकृति महाश्रिता, मतलब दैवी प्रकृति मतलब श्रीमती राधारणी का आश्रम में उन्होंने है, जो महात्मा है और उसका हृदय विशाल होता है, जो विशाल तो था क्योंकि स्वाधीन कराया मैंने भारतवर्ष में। उनका पास जब लेके गए कि अब बेटा बहुत मिठाई खाता है, तो महात्मा गांधी ने उसे जोरदार मिठाई खिलाया करते थे, तो उन्होंने बोले कि एक हफ्ता का बाद लेके आओ। तो माता वो बात को ध्यान रखें इधर, क्योंकि जे किस नाम हजे से बड़ चतुर होता है, क्योंकि भगवान गीता में बतला दिए कि ददामी बुद्धि जगतम जैन मामो पजानति थे, जो भक्त भजन करता है तन मन धन से या अन्य भाव से तो भगवान उनको आर बुद्धिजुग प्रदान करते हैं। तो माता फिर बेटा को लेके गए एक हफ्ता का बाप, तब तो महात्मा गांधी ने मिठाई बंद कर दी, क्योंकि अभी खाया करते थे बालने से उसका असर होगा नहीं, इसलिए मना करते। तो माता बहुत दिमाग से पूछा था महात्मा गांधी आप उस समय और मैं जो लेके आया था अब उस समय मना नहीं किया, तो बोले मैं खुद में उस समय मिठाई चालू रखा था खाने के लिए। इससे भी हमको पता चलता है कि हम जो आचरण नहीं करेंगे दूसरा का ऊपर असर नहीं होगा। शास्त्र में इसे हमारा वर्णन है कि कोई आचार करता कोई प्रसार नहीं करता, कोई प्रचार करता कोई आचार नहीं करता। श्रीनिवास कविराज बोले कि आचार प्रचार करो हो दुई कार्य, तुम आचार भी करो एवं प्रचार भी करो तो वो फायदा हो, नहीं तो मानगत प्रतिचार के लिए आप भरपूर लेक्चर दे दिए लेकिन खुद पालन नहीं किया, उससे फायदा नहीं हुआ। इसको हमारे गोस्वामी लोग अनुमोदन नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। तो एक बार मायापुर में परम पूज्य जयपतका महाराज और भक्तिचार्य महाराज ब्रह्मचारी मीटिंग दे में सब लोग को बता रहे थे, तो वेणुधारी प्रभु अभी जो भागवत महाराज हैं उन्होंने एक सब का तरफ से उन्होंने एक प्रश्न किए थे कि जब परिपक्व अवस्था में प्रचार करना चाहिए, जब हम अच्छा से आचरण करें आदत डाल जाए हमारे, अभी तो हमको शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, तो भक्तिचार्य महाराज ने उत्तर दिए कि आप सोलोमाला जप करते हो, बोले हाँ करते हैं, मंगल आरती करते हो, हाँ करते हैं, संध्या आरती जाते हो, हाँ जाते हैं, भगवत गीता रामायण महाभारत आदि पढ़ाई करते हैं, बलहान करते हैं, यही परिपक्व अवस्था। क्योंकि महाराज समझ गए कि ब्रह्मचारी का भक्त लोग चाहता है कि अभी कुछ बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर लेंगे, बड़ा पंडित बन जाएंगे तो हम जाएंगे, तो सीधे सीधे मना कर दिया। तो इससे हमको शिक्षा मिलता है कि हम जो कर रहे अथा से वो करना भी चाहिए और वो दूसरा को बताना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि जन्म हेलो जार जन्म सार्थक कर परोपकार। भारत भारत में हम जन्म लिए हैं तो हमारे जन्म को हम सार्थक करेंगे एवं दूसरा का उपकार करेंगे तब तो हमारे जीवन का सार्थक होगा। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है, कमेंट है? श्रीमद् भागवतम की जय।